नमोस्तु पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम काव्य सर्गम करो। ओकारमिंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षितं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणो प्रक्षालत सकल भूतले कलंका मुनि प्रपाशत तीर्था सरस्वती हरत नो दुरितम अज्ञान तिमिरांदानान ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन मीलतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम् श्रेष्ठं परिवर्धकम् धर्म संबंधकम् भगवदीव मनम् प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण श्रामकाचार्यनां ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्ते वचनोनुसारमासान् श्रीमर आचार्य प्रवस मंत्र भद्द स्वामिना विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिरात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद्विद्यादर्पणाय ते। देवलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। हमारी आत्मा के उत्थान और पतन के दो ही निमित्त हैं, एक धर्माचरण एक पापाचरण। जब हमारे जीवन में पाप का समावेश हो जाता है तो जीवन का पतन होता है, अधोगति की तरफ चला जाता है और उसके जीवन में पापों से विरक्त होकर के धर्माचरण का प्रवेश होता है, उसका जीवन पवित्र बन जाता है, उसके जीवन का उत्थान होता है, विकास होता है। हम सब भी यहां इसी भावना से अध्ययन यहां कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि पापाचरण से हम मुक्त हो और धर्म हमारे भीतर में प्रकट हो, इसी भावना लेकर के यहां किया जा रहा है। चरित्र का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि वह हमारे संसार की निवृत्तियों कारण है। इसलिए लिखना पड़ा होगा कि संसार क्रिया निवृत्ति चारित्रम, संसार की क्रियाओं की निवृत्ति का नाम चारित्र है। यह संसार में कारणभूत क्रियाओं को दूर करने का नाम चारित्र है, जिनकी वजह से हमारे संसार का निर्माण होता है। वो क्रियाएं किस तरह से छूटें, वह प्रयत्न, वह आचार आचरण उसका नाम ही चारित्र यहां पर दिया गया है। हर व्यक्ति पालन करता है, आचरण करता है, लेकिन आचरण करने के साथ साथ यदि हमारा आचरण ठीक ठीक नहीं है, सम्यक नहीं है, तब पर उस आचरण से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। जो हमने परम उद्देश्य अपना बनाया कि हमारे संसार का अंत होना चाहिए, इस उद्देश्य से यदि आप चारित्र को ग्रहण किया हो, किए हुए हो, तो यदि सम्यक ना हो तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। इस सम्यक चारित्र के साथ में जो सम्यक एक विशेषण दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषण है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ के भीतर इस सम्यक शब्द को लेकर के उन्होंने एक वाक्य लिखा, अज्ञान निवृत्ति अर्थम। यहां जो सम्यक शब्द के साथ में साक्षात के साथ सम्यक शब्द दिया गया है, वह अज्ञान पूर्वक किए जाने वाले आचरण की निवृत्ति के लिए किया गया है। यदि हमारा आचरण अज्ञान से सहित है तो हमारी साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता। हम जिस अपने साध्य की सिद्धि करना चाहते हैं उसमें हमारा आचरण सम्यक होना चाहिए, अर्थात अज्ञान से रहित होना चाहिए। अज्ञान क्या है? जहां आचरण करते होंगे उस आचरण का लक्ष्य भी हमारे भीतर में नहीं आता है, समीचीन रूप से उसका पालन नहीं किया जा रहा हो तो अज्ञान ही है। किस क्रिया के करने से हमें कौन सा लाभ होगा, ये ज्ञान तो हमें होना चाहिए। ये ज्ञान नहीं होगा तो उस क्रिया करने से क्या फायदा है? फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही क्रियाएं करते हैं, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी की क्रियाओं में बहुत बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी भी वही आचरण करता है, ज्ञानी भी वही आचरण करता है, लेकिन ज्ञानी अपने आचरण से परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है और अज्ञानी अपने उसी आचरण के कारण उसी संसार में रहा आता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। देखने वाले को ऐसा लगता है कि दोनों की क्रियाएं एक जैसी ही हैं, लेकिन नहीं, अंतर होना चाहिए। बाहर से भले ना हो लेकिन भीतर से तो अंतर होना चाहिए। उसका उद्देश्य समझना चाहिए कि एक ही क्रिया को करते वक्त हमारा क्या उद्देश्य है। उद्देश्य की यदि पूर्ति हो रही हो तब तो हमारा आचरण ठीक ठीक है। हम कषायों को कम करने के लिए, राग देश को कम करने के लिए आचरण कर रहे हैं, यदि हमारे जीवन में राग देश की वृद्धि हो रही हो तब लगता है कि हमारा आचरण अज्ञान पूर्वक किया जा रहा है, सम्यक आचरण नहीं है। यदि समीचीन आचरण किया जाता तो राग देश की निवृत्ति नियम से होती, धीरे धीरे इस कषायों में कमी अवश्य आती, और कषायों की कमी नहीं आने से हमारा आचरण सम्यक नहीं माना जाएगा। हम जो भी व्रत ग्रहण करें, जितना भी आचरण का हम पालन करें, हमारा दृष्टिकोण वही होना चाहिए, हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए कि हमारे भीतर में राग द्वेष की कमी आ रही है या नहीं। चाहे ज्ञान की आराधना कहो या चारित्र की आराधना कहो, अनुष्ठान कहो, दोनों में यदि राग द्वेष की कमी आती है तो ज्ञान की भी सार्थकता है और उस आचरण की भी सार्थकता है। एक दिन मैंने आपसे कहा था कि ज्ञान होने पर यदि राग द्वेष की कमी नहीं आए तो वह ज्ञान कोई काम का नहीं होता, व्यर्थ है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि जिस आचरण को करने के बाद में यदि हमारे राग द्वेष में कमी नहीं आए तो वो आचरण भी कोई काम का नहीं है, फिर ठीक नहीं है। हमें अपने आचरण को ठीक ठीक बनाना चाहिए। ऐसे ही आचरण की चर्चा यहां पर की जा रही है। आचार्य श्रीमद्भट महाराज उस आचरण का कथन यहां कर रहे हैं। उस श्रावक के जीवन में जितना हो सकता उसका कथन किया जा रहा है। आचरण तो इतना विशिष्ट है, इतना महान है कि यदि इसको परिपूर्णतया पालन किया जाए तो उसे ग्रस्त गृहस्थी छोड़ना पड़ेगी, मुनि जीवन अंगीकार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वह उस परम चारित्र को प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो उसको पालन करने में समर्थ नहीं, भी व्यक्ति कैसे अपने जीवन को पवित्र करें, धीरे धीरे शनि शनि एक एक कदम रख करके भी किया जा सकता है। और उसके लिए इसलिए समन्तवत महाराज ने या हमारे आचार्य कुमकुद महाराज ने आदि आदि बहुत आचार्य हुए जिन्होंने श्रावक धर्म का कथन किया। श्रावक धर्म के लिए यही कहा गया है कि हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये पांच पाप हैं, और इन पांच पापों से थोड़े थोड़े यदि हम विरक्त होते हैं, थोड़ा थोड़ा पाप यदि ये कम हो रहा है हमारे जीवन में, उतना उतना व्रत आ रहा है, उतने उतने हम ग्रस्त धर्म के पालन करने वाले हैं, अर्थात हम धर्मात्मा हैं। जहां है वहां पर हम ठीक से जी रहे हैं। ग्रस्त है वो, ग्रस्त धर्म ना हो तो उसके ग्रस्त में होने का कोई औचित्य नहीं है। खाली अकेले कमाना खाना और जीवन गुजार लेने का नाम जिंदगी नहीं है, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं भैया। यदि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो खाने कमाने के साथ साथ जिस पर जिस स्थिति में हम हैं, जिस स्थान पर हम हैं, उस स्थान पर उस योग कम से कम धर्माचरण तो हमारे भीतर आना चाहिए। बहुत मोटी सी चीज है ये, वो हर ग्रस्त के भीतर आ सकती है, क्योंकि उन्होंने अनुव्रतों में कहा था ग्रस्त के पांच अनुव्रत होते हैं। अनुरूप से भी यदि छोटे से अंश रूप में भी यदि व्रत का पालन हो रहा है तो भी उसके ग्रस्त जीवन की सार्थकता है, और प्रत्येक ग्रस्त के जीवन में ये होना चाहिए, अन्यथा उस ग्रस्त का कोई औचित्य नहीं है। और होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, इतना सरल इतना कठिन नहीं है ये अहिंसा आदि पांच अनुव्रत निभाना, इतने कठिन नहीं जितने कि आपने समझ रखे हैं, लोगों ने उसे इस तरह का बढ़ा चढ़ा के बना करके रख दिया है। अरे नहीं ऐसा करोगे तो ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप इस तरह की ऐसा आडंबर सा फैला देते कि देखने वाला यदि करना चाहे तो उसका मन तक नहीं होता करने का कि हम करें। आचार्य समन्तवत महाराज की दृष्टि से यदि हम देखें तो वो तो ये कहते हैं कि अंश रूप में भी यदि पाप छूटते हैं और हमारा संकल्प यदि उसको छोड़ने का है तो वह भी अनुव्रत ही है। क्या हिंसा से हम विरक्त नहीं हो सकते हैं? क्या झूठ से नहीं हो सकते? ऐसा इस तरह के पाप जिनके करने से संकल्प पूर्वक किया जा रहा हो, ऐसा कोई पाप हम नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं, और थोड़े रूप में कम से कम दूसरे जीवों के प्राणों का हनन नहीं करना, इतना पाप नहीं छोड़ सकते हम। संकल्प पूर्वक किया जाना ऐसा पाप नहीं छोड़ सकते। ऐसा क्या हम झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते जिसके बोलने से दूसरे के प्राण घात हो जाए? ऐसा झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते क्या? हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी दुकान में मकान में ऑफिस में बैठे आप झूठ मत बोलना, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके झूठ से यदि किसी के प्राणों का घात होता है ऐसा झूठ का त्याग तो आप कर सकते। इतना कठिन नहीं है कि आप नहीं कर सकते, और यदि आप नहीं कर सकते इसके मतलब है कि आप ये सब करना चाहते हैं पाप, आप दूसरों को मारना चाहते, पीड़ा देना चाहते हैं। सारे पापों से दूसरों को पीड़ा पहुंचती है और सबसे हिंसा होती है। झूठ से भी हिंसा होती है, चोरी से भी हिंसा होती है, अभद्र से हिंसा होती है, परिग्रह से भी हिंसा होती है। इस धोखे में मत रहना कि यह हिंसा से ही हिंसा होती है, सारे पापों से हिंसा होती है। लेकिन हमें देखने की दृष्टि होनी चाहिए कि झूठ में कैसे हो सकती। आप झूठ बोलते दूसरों के प्राण चले जाते हैं, हिंसा नहीं है। झूठ का भी पाप है और हिंसा का भी पाप। आप चोरी कर लेते दूसरे के यहां डाका डाल दिया तो चोरी का तो पाप है, लेकिन उसके प्राणों को जो दुख पहुंचा वो हिंसा नहीं है क्या? अब्रह्म में अब्रह्म का पाप तो है, लेकिन उस क्रिया में जितने जीवों का घात होता है क्या वो हिंसा नहीं है क्या? परिग्रह के संचय करने में परिग्रह तो पाप है, लेकिन उसके संचय में कितना हम कुछ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं जिससे प्राणों का हनन हो जाता है दूसरों की, क्या वो हिंसा नहीं है क्या? है। सारे पापों से हिंसा हो रही है। कम से कम इस हिंसा से बचने के लिए तो हमें थोड़े थोड़े अंश में इन पापों का त्याग करना ही चाहिए। स्थूल रूप से कहा जा रहा है, बहुत मोटे तरीके से कहा जा रहा है, इस तरह का भी नहीं कर सकते हम, कर सकते ये तो हमारी बेईमानी हो गई। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप अहिंसा प्रति इसलिए आप अंग्रेजी दवाई खाना छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाजार में खाना छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप पानी यदि नहीं छान पा रहे तो छान के, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि किसी जीव को मैं मारूं ऐसा संकल्प से होने वाली हिंसा से तो आप बच सकते हैं कि नहीं बच सकते? ये नहीं कर सकते त्याग, ये अनुव्रत नहीं ले सकते क्या? ले सकते। यदि आप कहते हम नहीं ले सकते, ये आपकी कायरता है, ये आपकी बेईमानी है, आपकी कमजोरी है। आपके पास शक्ति है लेकिन आप उसे छिपा रहे हैं, अपने साथ आप छल कर रहे हैं, गलत है। हमारे पास क्षमता है और हमें करना चाहिए। आज कल आपने सुना था अहिंसानुव्रत के विषय में, आज सत्यानुव्रत के विषय में हमें समझना है। अहिंसा की जब जब बात आती है तब तक हमारी दृष्टि वहां जाना चाहिए। कितनी तरह से हिंसाएं हो सकती हैं पहले वो हमारी दृष्टि में आनी चाहिए। जब तक हिंसा का समीकरण हमारी दृष्टि में नहीं आएगा तब तक शायद हम अहिंसा व्रत को पाल नहीं सकते, चाहे थोड़े अंश में भी नहीं पाल सकते। हमें पहले हिंसा का समीकरण आना चाहिए कि हिंसा कहां कहां किस किस तरह से होती है और किस किस तरह की हिंसा से हम बच सकते हैं, आसानी से बच सकते हैं, ये तो हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। चार प्रकार की हिंसाएं बताएंगे, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। चार प्रकार से हिंसा करते हैं और होती है। ग्रस्त जीवन में रहते हुए व्यक्ति के जीवन में चार प्रकार से होती है, संकल्प से भी होती है। मैं इस जीव को मारूं, जो दो इंद्री आदि जो जीव हैं, चलने फिरने वाले जिनके दो इंद्रियों से लेकर पांच इंद्री तक के जितने जीव हैं, मैं इस जीव को मारूं ऐसा मन में संकल्प किया जा रहा हो और उसे मारा जाए, ये संकल्पी हिंसा है। और ऐसी संकल्पी हिंसा से हम कितना पाप कमा रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। हमें विचार करना चाहिए कि ऐसी संकल्पी हिंसा से आप बस, आप व्यापार करते, मुझे मालूम किसी ने गल्ले की दुकान खोली, मुझे ये मालूम है कि गल्ले की दुकान खोलेगा तो कितनी हिंसा करेगा, मुझे मालूम है। हलवाई का काम करेगा तो कितनी हिंसा, मुझे मालूम है। लेकिन ऐसा भाव तो नहीं करता कि मैं इस चीटे को मारूं, संकल्प करके ऐसा भाव गल्ले का व्यापारी या हलवाई नहीं करता होगा, या और कोई भी व्यापारी जो है ऐसा किसी जीव को मारने का भाव लाता है क्या? कोई नहीं लाता। इसी का तो त्याग करा रहा है। और क्या त्याग करा रहा है कि मैं इस जीव को मारूं, ऐसा जो आपके मन में संकल्प, आपके वचनों में संकल्प, आपके काय से जो संकल्प हो रहा है और इसमें आपने करने कराने और अनुरोधने की बात आ रही है, इसका त्याग नहीं हो सकता क्या? इस संकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा का समीकरण हमें समझ लेना चाहिए कि नौ तरह से होता है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारस से, अनुमोदना से। इनका यदि हम गुणा भाग बैठाना तो नौ बनते हैं हमारे बिंदु। त्रस जीवों का संकल्प पूर्वक घात जहां हो रहा वो नौ तरह से होता है। संकल्प पूर्वक मन से त्रस जीवों का घात करना, ये पहला समीकरण है। संकल्प पूर्वक मन से त्रस जीवों का घात करना, ये पहला है। उस संकल्प पूर्वक मन के द्वारा दूसरों से त्रस जीवों का घात कराना, ऐसा भाव आ गया, ये दूसरा है। और मन से संकल्प पूर्वक त्रस जीवों के घात की किसी व्यक्ति कोई कर रहा हो, त्रस जीवों की हिंसा, उसकी अनुमोदना कर देना, ये उसका तीसरा समीकरण। वो कहते हैं इसी तरह वचन में भी कि संकल्प पूर्वक वचन से त्रस जीवों की हिंसा का संकल्प होना कि इस जीव को मारूं, ये वचन का है। और संकल्प पूर्वक वचन के द्वारा त्रिजीवों को मारने का, दूसरों से कहना कराना, हिंसा कराना, ये दूसरा है, पांचवा हो गया है। और इसके बाद में संकल्प पूर्वक वचन के द्वारा त्रिजीवों की हिंसा की अनुमोदना कर देना। कोई जीव कर रहा हो और हमने कहा बहुत अच्छा, वचनों से बोल दिया, ये हमारा छठवां। वो कहते संकल्प पूर्वक शरीर के द्वारा स्वयं त्रिजीवों की हिंसा करना, ये सातवां है। और संकल्प पूर्वक त्रिजीवों की स्वयं दूसरों से हिंसा कराना शरीर के द्वारा, और त्रिजीवों की हिंसा करते हुए संकल्प पूर्वक अपने शरीर से उसकी अनुमोदना कर देना, ये नौवां है। इस तरह ये संकल्प पूर्वक किए जाने वाले हिंसा के नौ तरह बनते, नौ प्रकार बनते हैं। आपको इन नौ प्रकार से बचना चाहिए क्या? नहीं कर सकते, इसे बच तो सकते हैं, यदि हम बचना चाहें तो बच सकते हैं, लेकिन हम बचने की कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में अभी हिंसा हिंसा नहीं आई है, हमें ऐसा लग नहीं रहा कि ये पाप है, बहुत बड़ा पाप हो रहा है। आरंभी हिंसा, आप घर में भोजन बनाते हैं, नहाते धोते, पानी भरते आदि गृहस्थ के काम में बहुत सारी हिंसा होती है, ये आरंभ जनित हिंसा मानी जाती है, इससे आप बच नहीं सकते, मुझे मालूम है, कोई नहीं बच सकता ग्रस्त। उद्योगी, व्यापार करते हैं आप, खेती करते हैं, उसमें हिंसा होती है, उससे आप बच नहीं सकते। आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र समाज धर्म की सुरक्षा के लिए यदि उस पर कोई आक्रमण करता है तो उसमें भी यदि कोई हिंसा हो जाती है तो विरोधी हिंसा है, उस विरोधी हिंसा से भी आप नहीं बच सकते, क्योंकि आपके लिए कोई मारने आया तो आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, पर हो सकता है कि उसमें आपको प्रतिकार करने में दूसरे का घात भी हो जाए, ये हिंसा तो हो जाए, लेकिन इससे आप बच नहीं सकते। जब आप इससे बच नहीं सकते, चार प्रकार की हिंसाओं में से आप तीन से तो बच नहीं सकते, एक से बच सकते हो, तो एक के त्याग का संकल्प तो करना चाहेंगे आपके लिए कि नहीं करना चाहेंगे, करना चाहेंगे कि मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव के लिए मारूं, ऐसा मन में विचार, ऐसे वचनों से उच्चारण और ऐसे अपने शरीर की सहमति नहीं करूंगा, कृष्य कारस से अनुमोदना से, इस तरह का जो त्याग कर देता है उस व्यक्ति के भीतर में अहिंसाणु व्रत प्रकट होता है, वो अहिंसा व्रती कहलाता है, अहिंसक कहलाता है। और दूसरी बात कि जहां हमारे अपने ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज और राष्ट्र के ऊपर कोई किसी तरह का यदि आक्रमण आए तो उस समय आपको विरोध करना चाहिए, अपने सबकी सुरक्षा के लिए विरोध करना चाहिए। यदि इसमें आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो मतलब कायर हैं, आपका विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है कि है। आपके लिए कोई एक चांटा मारने आ जाए तो उसका तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपके समाज के ऊपर कोई आक्रमण हो जाए तो आप कहते हैं हम तो अहिंसा व्रती हैं, हम अहिंसा की जय बोलते, महावीर के अनुयायी हैं। गलत है, महावीर का अनुयायी कोई महावीर ही हो सकता है, कायर नहीं हो सकता है। ये ऐसा कहना कायरों का काम है कि समाज या धर्म के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए और कहो कि नहीं हम तो भैया अहिंसा व्रती हैं और हम तो महावीर के सिद्धांतों को पालते, इसलिए हम नहीं लड़ सकते। गलत है, आप महावीर के सिद्धांतों को बिल्कुल भी नहीं मान रहे, आप तो कायरता में जी रहे हैं, कायर बने हुए हैं। ये कायरता नहीं अपनानी चाहिए। यदि वास्तव में तुम अहिंसा व्रती हो और यदि लड़ना पसंद नहीं है तो छोड़ो, आओ हमारे मैदान में आ जाओ, बिल्कुल मत, हम नहीं लड़ते किसी से, कोई विरोध नहीं करते किसी का, क्योंकि हमारा त्याग है विरोधी हिंसा का, हम नहीं करते। आपका त्याग है क्या विरोधी हिंसा का त्याग? आवाज नहीं आ रही कोई? नहीं है तो क्यों चुप बैठे रहते हैं आप लोग? क्यों चुप बैठे रहते हैं? आपके ऊपर, आपके परिवार, आपके समाज, धर्म और राष्ट्र के ऊपर आक्रमण होते जाए और आप चुपचाप बैठे रहें, गलत है। आज समाज की दुर्दशाएं ऐसी होती चली जा रही और हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा। समाज में बाहरी इस तरह के आक्रमण हो रहे, दुष्प्रवृत्तियों का साम्राज्य फैल रहा और हम चुपचाप बैठे हो। कुसंस्कार यहां पर पैदा होते चले जा रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हो। हमें इसका विरोध करना चाहिए और इसमें विरोध में चाहे जो हो जाए वो भी करना चाहिए। अपने राष्ट्र जहां आप रह रहे हो, जिस धरती के ऊपर रह करके आप धर्म ज्ञान करते हैं, उस धरती की सुरक्षा के लिए, उस धरती पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए आपको विरोध करना चाहेंगे। आज अहिंसा की बात आई, इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं, आज समाज राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप सिद्ध हो रहा है। कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं मानता हूं कि आप किसी जीव का घात नहीं करते होंगे, मैं मानता हूं कि आप मांस नहीं खाते होंगे, किसी जीव को नहीं मरवाते होंगे, लेकिन राष्ट्र में होने वाली इस हिंसा को क्या आप इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। आपका कोई विरोध नहीं है इस देश में होने वाली हिंसा के प्रति, आपका कोई विरोध नहीं हो रहा है। जहां इस धरती के ऊपर हर प्राणी मात्र के लिए जीने का अधिकार हो, वहीं पर मूक प्राणियों के लिए मौत के घाट उतार दिया जाए, आपके लिए कोई चिंता नहीं है। आप तो महावीर के अनुयायी हैं भैया, क्या कहें, चिंता तो हमें लगी है क्योंकि हमारे मन में करुणा आ रही है, बार बार पूरा हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आपके मन में कुछ नहीं आ रहा। आप तो महावीर के अनुयायी हैं, अहिंसक हैं। मुझे लग रहा है कि मैं अहिंसक नहीं हूं शायद, जो मैं कह रहा हूं बार बार कि अपने देश में होने वाली इस कुकृत्य को रोकना चाहेंगे, इसे अपने देश की सुरक्षा करनी चाहेगी। यदि ये पशुधन इस देश से समाप्त हो जाएगा तो आपका जीना दुर्भर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, आप जी नहीं सकोगे। आपको क्या चाहिए? आपको दूध चाहिए, आपको अन्न चाहिए, कहां से मिलेगा? ऐसा कहीं से नहीं मिलेगा आपके लिए। यदि गाय भैंस नहीं रहेंगी, भेड़ बकरियां नहीं रहेंगी, आपको दूध मिलेगा क्या? कौन सी गवर्नमेंट है जो यहां पर ऐसी मशीन फिट कर दे और दूध ला करके दे दे? कोई नहीं है। घी बना दे, कोई है? वो एक ही मशीन है जो दूध, गाय और भैंस बकरी आदि है, जो आपके लिए दूध देती है, घी देती है, सब कुछ देती है। क्या नहीं देती? आपको अनाज चाहिए, आपके बैल परिश्रम करते हैं और अनाज पैदा करके आपके लिए खाने के लिए देते हैं, और उनकी सुरक्षा के बाबत आपका ध्यान नहीं है। एक स्वर से विरोध होना चाहिए। इस संकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा का विरोध है। इस देश में पैसे की लोभ के कारण, अपने स्वार्थ की सिद्धि के कारण यहां मांस बेचा जा रहा है। कभी यहां पर सोने चांदी का व्यापार होता था, अनाज का व्यापार होता था, आज यहां मांस का व्यापार हो रहा है। और यहां देश में तो छोड़िए, यहां विदेश की थालियों में परोसा जा रहा है यहां का मांस, और आप चुपचाप बैठे हुए, वो कौन परोस रहे हैं? आपने जिनको चुनकर के उस गद्दी पर बिठाना है, वही इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं और आप उसका समर्थन करते चले जा रहे हैं। मतलब आप हिंसा कर रहे हैं। संकल्पी हिंसा का आपका समर्थन है, ध्यान रखना। आप बच नहीं सकते इस पाप से। आपको इस पाप से यदि मुक्त होना है तो आपको एक आवाज उठानी चाहिए, हर व्यक्ति के लिए संकल्प करके उठना चाहिए यहां से कि आज मैं ऐसा संकल्प करके जाता हूं कि मैं तो विरोध करूंगा, लेकिन मुझसे जो भी व्यक्ति मिलेगा उससे भी ये कहूंगा कि तुम्हें भी इसका विरोध करना चाहिए, उसे प्रेरणा दूंगा। किसकी सुरक्षा के लिए है? क्या आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चाह रहे हो? मेरा कोई स्वार्थ है ना? आपका है ना मेरा, किसी का स्वार्थ नहीं है। सबके हित के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए बात कही जा रही है, और इसका संकल्प हमें करना चाहिए। संकल्प पत्र भरने की बात यहां पर आती है कि हम मांस निर्यात के विरोध में संकल्प पत्र भरें, तो लोग कहते क्या करना महाराज जी, क्या रखा है? आप तो कुछ आत्मा आत्मा की चर्चा करो, इसमें क्या रखा है? सब बाहर की क्रियाएं हैं। आप लोग बहुत धर्मात्मा हैं और मैं ऐसे धर्मात्माओं से तो डरता हूं, हाथ जोड़ता हूं, भगवान बचाए।
जिनके लिए प्राणियों का आक्रमण सुनाई नहीं दे रहा है, आत्मा की बात सुनाई दे रही है। उपदेश सुनने के लिए सब तत्पर हैं। अभी 10 दिन देखूंगा तो सफेद सफेद कपड़ों में लोग भीड़ भाड़ में दिखेंगे, लेकिन कभी एकाद व्यक्ति ऐसा गया कि मैं बूचड़ खाना बंद कराता हूं, तो 10 दिन के भीतर में कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट के अधिनियम है, यहां पर्व के दिनों में बूचड़ खाने बंद रहते हैं। क्या आप बंद करा सकते हैं? अलग से मेहनत नहीं करनी है, नियम बने, कानून बना होता है, आपको जाकर के आवाज उठानी है कि बंद होने चाहिए। 3 दिन बंद रह सकते हैं पर्यूषण के दिनों में कत्ल खाने। एक दिन में हजारों गाय भैंस काट दिए जाते हैं आपके ही भोपाल में। यदि आपने 3 दिन के लिए बंद करा दिए तो कितने पशु बच जाएंगे? कम से कम 3000 पशु तो आपके बच जाएंगे। इतनी तो आप दया कर सकते कि नहीं कर सकते? ये तो करनी चाहेगी आप, सोना नहीं चाहेगी आपको। आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपको जाकर के विज्ञापन देना चाहेगी कलेक्ट्रेट में, SP के यहां, मुख्यमंत्री के यहां, कि इन दिनों जो गवर्नमेंट के नियम बने होंगे नियम के आधार पर एक बूचड़खाने बंद होने चाहिए। आप अपने अधिकार में तो कर सकते हैं, बागी दिन चलते हैं उसको नहीं बचा सकते, आपकी कोई बात नहीं, कमजोरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए तो आप कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो मैं मानूंगा कि आपके पर्यूषण मनाने की सार्थकता है। पहले प्राणी मात्र के जीवन की सुरक्षा का भाव यदि आए तो अपनी आत्मा की सुरक्षा का भाव आएगा, अन्यथा हम आत्मा की सुरक्षा की बात करें और हमारे बाजू में दूसरे की असुरक्षा हो, कोई मतलब नहीं। इसका नाम धर्म नहीं है। हम यहां दान दे रहे हैं लाखों रुपए और बाजू में पड़ोसी भूखे मर रहा हूं, इस दान का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हम यहां अहिंसा की जय जयकार करें, 10 दिन हम अहिंसा पर प्रवचन सुनेंगे और आप अहिंसक कहलाएंगे और आपके यहां हिंसा हो, ये तो मुझे पसंद नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप अहिंसक हैं, अहिंसा का उपदेश सुनना चाहते हैं तो अहिंसा के लिए आवाज उठानी चाहिए और हिंसा के विरोध में आवाज उठानी चाहिए। इस संकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा से बचने की कोशिश करके आप, लेकिन करें क्या? आज इस तरह का कुछ हो रहा है जिसे देख करके मुझे शर्म आती है। कहना नहीं चाहेगी, मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि हमने समय सार पढ़ लिखा है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अहिंसा की पत्रिका में, शाकाहार की पत्रिका में जो देश विदेश में जाती है उसमें लेख लिखा है कि ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई किसी को बचा सकता है। ऐसा जो तुम्हारे मन का विचार है, ये भाव है, ये मिथ्या है। शाकाहार की पत्रिका में एक जैन विद्वान पंडित का ऐसा लेख छप रहा है और उसमें गाथा का उद्धरण दिया जा रहा है, समय सार की बंधाधिकार की गाथा का उद्धरण दिया जा रहा है कि आयु खैण मरणम जीवानम जिणवड़े ही पंडत्तम आयु न हरति तुम कहते मरणम कदम। ये गाथा लिखी जा रही है कि जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है और तुम किसी की आयु का हरण कर नहीं सकते हो, इसलिए तुम दूसरों को मारते हो। ऐसा जो तुम्हारा विचार है ये मिथ्या है। और इसी के साथ में गाथा दी जा रही है कि आयु बयेण जीवति, आयु कर्म के उदय से जीव जीता है। तुम व्यर्थ में ऐसा कहते हो कि हम दूसरों को जीवन दान दे रहे हैं, तुम्हारा अभिप्राय भी मिथ्या है। ये गाथाएं उस लेख में कोट की गई हैं। ये समय सार की गाथाओं का दुरुपयोग हो रहा है, मुझे पूरा के साथ कहना पड़ा है। और अभी विदेश में एक लेक्चर हो गया एक व्यक्ति का, उसमें भी यही कहा गया है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है, तुम एक दूसरे द्रव को मारो कोई नहीं मरता है, किसी के मारने से ना कोई मरता है ना बचाने से कोई बचता है। ये उपदेश दिया जा रहा है, व्यवहार धर्म उपदेश दिया जा रहा है, विदेशों में जाकर के दिया। आप सोचिए, ये बातें आपके और हमारे बीच एक गोष्ठी की बातें थी, तत्व चर्चा की चीज थी, यहां समझने की चीज थी, ये लोक व्यवहार की चीज नहीं है। समयसार कि तुम यहां जाकर के ऐसा उपदेश कर दो, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो, अब मैं कहूं तो खराब लग जाएगा आपको कि
एक अकाल मरण और सकाल मरण की चर्चा आती है, खूब प्रश्न है इसके ऊपर। आपकी दृष्टि में तो अकाल में मरण होता नहीं है, सकाल में ही होता है। जब सकाल में होता है तो हम किसी जीव को मारते नहीं, हमारे मारने से मरेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसका मरण होना ही नहीं है। हम किसी को ले जाकर के एक भट्टी में छोंक दें, उसका मरण नहीं है, आयु कर्म का क्षय नहीं, तो कैसे मरेगा? हम रेल के नीचे डाल दें पटरी पर, उसका मरना नहीं है, आयु कर्म है, तो कैसे मरेगा? क्योंकि सकाल में मरते हैं। ये हमने अर्थ निकाल रखे हैं और हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं। यदि ऐसा अर्थ निकाला जाए तो अहिंसा व्रत का पालन कभी हो नहीं सकता। यदि समाचार की गाथा के अनुसार अर्थ निकाला जाए कि ना तुम किसी को ना जीवन दान दे सकते हो, ना किसी के प्राणों का हरण कर सकते हो, ऐसा जो तुम्हारा आद्य होता है, ऐसा जो तुम्हारा परिणाम, वह मिथ्या है। यदि इसके अनुसार हम चलें तो सारे अहिंसा व्रत, अहिंसा महाव्रत, करुणा, दया, अनुकंपा, ये सब के सब एक तरफ बांध बूंद करके नाली में फेंक देना चाहेंगे, कोई काम के नहीं है। भरे काय को आचार्यों ने लिखे, क्यों लिखे? कुछ ना कुछ इसका औचित्य तो होगा, बस तो आचार्यों ने इसका वर्णन किया है, उस औचित्य को हमें समझना चाहेंगे। यदि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर भी सकता है, क्या कर सकता है? यदि आपको एक चांटा मार दिया जाए तो आपको पूरा नहीं हो सकती, होती कि नहीं होती? तो एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कुछ किया कि नहीं किया? हैं? यहां से एक शब्द हम बोल दें आपके लिए, आपको गुस्सा आ जाएगा अभी, तो एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कुछ किया? शब्द तो पुद्गल है और आप जीव हो, आपके भीतर कैसे प्राणमन होगा? ये कथन अलग है, शैलियां अलग हैं, अपेक्षाएं अलग हैं, और उन अपेक्षाओं को समझ करके कथन करना चाहिए। मैं जानता हूं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, मैं भी मानता हूं ऐसा आचार्य ने लिखा है, वो सत्य है, लेकिन सब जगह ये घटित नहीं करना चाहिए। यदि लोक व्यवहार में भी ऐसा घटित कर दोगे तो सारा लोक व्यवहार समाप्त हो जाएगा, आप जी नहीं सकोगे। इसलिए हमें ये अकाल मरण और सकाल मरण को भी समझना पड़ेगा। यदि इसको नहीं समझेंगे तो अहिंसा व्रत का पालन हो नहीं सकता। और हम यहां अहिंसा व्रत की बात कर रहे हैं, कैसे पालन? जब मरण होता ही नहीं है तो तुम मार कैसे सकते दूसरे को? काय को अहिंसा व्रत की बात करते हो, व्यर्थ है। नहीं, सब सार्थक है। एक दृष्टि डालें कि कैसे होता होगा। जिसको नहीं मानना भैया, मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप माने, बिल्कुल भी नहीं है, और ना मैं ये कह रहा हूं कि आप मानिए मैं, लेकिन ये आदम का जो दर्पण है वो आपको दिखाना चाहता हूं कि आदम के दर्पण में आप देख लें कि वास्तव में ठीक ठीक है जो हम कह रहे हैं, या कह रहे हैं या गलत है। अकाल मरण की बात कही, उस सकाल मरण की बात कही। होता है या नहीं होता मैं नहीं जानता, आचार्य उमास्वामी महाराज से पूछिए वो क्या कहते हैं। औपाधिक चर्मोहोत्तम देहा असंख्य वर्षा ओसो अनवर्त्यावशा। उन्होंने तत्त्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में एक सूत्र लिखा है कि अकाल मरण किसका नहीं होता। उन्होंने लिखा कि उपवाद जन्म वालों का नहीं होता। जो उपास से जन्मते देव और नारकी हैं, इनका अकाल में मरण नहीं होता है। चरमोत्तम देहा, जो चरम और उत्तम, चरम मतलब उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं ऐसे वो, और उसी के साथ में उत्तम विशेषण आता जो सलाका पुरुष है, जो सलाका पुरुष उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं भी चरमोत्तम कहलाते, जैसे तीर्थंकर आते, इनका अकाल में मरण नहीं होता। असंख्य वर्ष आयुषा, वो कहते जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु है ऐसे जीवों का अकाल में मरण नहीं होता है। कौन बचाए भैया इसमें से? अब देवनारकी निकल गए, मनसो त्रेंच रहते हैं, और इनमें से मनसो त्रेंचों में से
चरमोत्तम देह वाले निकल गए उनका नहीं होता, असंख्यात वर्ष वाले जो त्रैंचोर मनुष्य हैं उनका भी नहीं होता,
लेकिन जो संख्यात वर्ष वाले यहां बैठे हुए हैं उनके विषय में आपकी धारणा क्या है मैं जानना चाहता हूं, होता है कि नहीं होता? होता होगा। एक बार सन 80 की बात है, सागर में धवल ग्रंथ की वाचना चल रही थी, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री उसके प्रमुख थे और वहां ऐसा ही प्रकरण उस ग्रंथ में आया। तो आचार्य श्री का कहना था कि सकाल मरण भी होता है और अकाल मरण भी होता है। पंडित जी बोले नहीं महाराज गलत है, अकाल में मरण होता नहीं है। तो बोले पंडित जी कैसे कह रहे हो? तो पंडित जी बोले कि निश्चय से अकाल में मरण नहीं होता। तो आचार्य श्री ने कहा कि पंडित जी मैं पूछना चाहता हूं कि मरण किस समय की अपेक्षा से कहा है? तो पंडित जी तो रहेगा चुपचाप। पंडित जी निश्चय में मरण होता है कि नहीं होता? आचार्य ने तो लिखा है कि निश्चय से ना आत्मा जन्मता है और ना मरता, निश्चय में से तो ना जन्म है और ना मरण है। तो अकाल और सकाल की बात तो समाप्त ही है, निश्चय में कोई बात नहीं। और मरण कैसे होता है? व्यवहार नहीं की अपेक्षा से होता है। तो भैया जब व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है तब तो मानना पड़ेगा कि अकाल और सकाल दोनों होते। और पंडित जी कह रहे हैं कि निश्चय पे तो सकाल होता है, ये व्यवहार से कहा जा रहा है अकाल मरण तो। और आचार्य श्री ने कहा कि आचार्य ने कहा है कि सकाल हो अकाल दोनों व्यवहार में से ही है। पंडित जी ने कहा कि महाराज आप तो हमारी बात काट रही आपने। तो आचार्य श्री बोले कि पंडित जी बात नहीं काटी है, आगम सामने रखा है। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, इसलिए उन्हीं ने सर्वार्थ सिद्धि की टीका की है, उन्हीं ने व्याख्या की है कि हो सकता है। आप मानते कि नहीं मानते? मैं नहीं मानता, क्योंकि आपने तो समय सार की बंधाधिकार की गाथाएं पढ़ ली, इसलिए तो कोई न मरता है तो अकाल में मरण हो नहीं सकता। भगवान के ज्ञान में जितना जिसका है उतना ही मरेगा। लेकिन उन्हीं कुंदकुंद महाराज की लिए यदि फिर से पढ़े हम समयसार के साथ साथ अष्टपाहुल पढ़े तो क्या मिलेगा उसमें? उन्होंने तीन गाथाओं का उल्लेख किया है, विश्वेयण रत्तक वह सत्तक गहन संकले साणम आहार उत्साहम निरूहणा खिज्जे ए आउ। ये गाथा सूत्र आचार्य कुंदकुंद द्वारा लिखित अष्टपाहुल का है, जिन्होंने समय सार में लिखा है, देवी कुंदकुंद है, दूसरे नहीं है, उन्हीं महाराज की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आयु किस तरह से क्षय को प्राप्त होती, किस तरह से कदली घात होता, किस तरह से अकाल में नष्ट हो जाती है, कौन कौन से निमित्त हैं? तो कहते विष के खा लेने से असमय में मर सकता है आदमी, समय से पहले मर सकता है। रक्त क्षय एक्सीडेंट हो जाए और खून निकल जाए आदमी मर सकता है, विषवेण रक्त तक खाए। वेदना हो जाए बहुत तीव्र तो उसमें भी आदमी का मरण हो सकता है। भय यदि हो जाए, बिजली गिरी उसके ऊपर नहीं गिरी लेकिन भय हो गया उसके प्राणांत हो गया, निमित्त बन गया। शस्त्र लग जाने से गोली लग गई, बंदूक लाठी मार दी, तलवार मार दी, इससे भी हो सकता है। और कहते हैं संकलेश आणम, जब अत्यधिक संकलेश परिणाम होते हैं ये भी आयु के क्षय में निमित्त बनता है, इससे भी मरण हो सकता है। आहार उत्साहम निरोधना, कहते हैं आहार का निरोध कर देने से मरण हो सकता है। और किससे हो सकता है? कहते हैं श्वास जो लेते हो उसको यदि बंद कर दिया जाए, लेना रोक दिया जाए तो मरण हो सकता है। रोहने खिज दे आयु, ये आचार्य कुंकुम महाराज लिख रहे हैं कि इससे आयु का क्षरण होता है। और उन्होंने तीसरी गाथा में लिखा है कि ई त्रि मरण जम्मे सूरम उवत जम्मे बहुवारम अमित्यु महादुखम तिब्बम पत्रोषितम मित्तम। कहते इस प्रकार त्रिंचोर मनुष्यों में जन्म लेकर के बहुत समय तक उत्पन्न होकर के बहु बार अमित्यु एक शब्द देखा है अपमृत्यु, इस प्राकृत का आप संस्कृत करेंगे हिंदी करेंगे अवमृत्यु अर्थात अपमृत्यु। अपमृत्यु क्या होता है? अकाल में मरण, अपमृत्यु। सपमृत्यु नहीं कहा है, समृत्यु नहीं कहा, अपमृत्यु का अवमृत्यु अर्थात अकाल में जो कहते हैं ऐसा जो मरण प्राप्त किया इससे महान दुखम पत्तोसी, तुमने बहुत बार महान दुख प्राप्त किया है। अब बताइए दोनों गाथाओं समाचार अष्टपाद की गाथाओं को सामने रखिए किसका क्या उद्देश्य है। समय सार में कुंदकुन महाराज का उद्देश्य है एक शुद्धोपयोगी साधु को समझाने के लिए कहा जा रहा है कि तुम अपने निर्विकल्प आत्मा के स्वभाव में से बाहर आकर के वो कह रहे हो कि मुझे अहिंसा व्रत का पालन करना है, मुझे सत्य व्रत का पालन करना है। तो कुंदकुंद महाराज कहते हैं कि तुम्हारी धारणा गलत है, ये अध्योसाय तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये अध्योसाय तुम्हें मंद का कारण हो सकता है और तुम कैसे बचा सकते हो। उसे समझाने के लिए कहा है तुम भी बचाने और मारने का विकल्प छोड़ो, ऐसा विकल्प तो कई बार तुमने किया, तुम्हारे बचाने अचाने से कुछ नहीं होता है। वहां निश्चय की दृष्टि में कथन किया जा रहा था कि तुम्हारी आत्मा है और तुम दूसरी आत्मा को क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, तुम तो अपनी निर्विकल्प समाधि में लीन हो, महाव्रत पालन का विकल्प मत करो। उसको समझाने के लिए समयसार में ऐसा कहा गया जिसका अर्थ हमने गलत लिखा है। और अष्टपाद में जो कहा गया है कि अकाल मरण भी होता है, इन गाथाओं को क्यों विस्मृत किया जा रहा है, ये आत्म का दर्पण हमें सामने रखना चाहिए। यदि इसको हम सामने नहीं रखते हैं तो आगम का अपलाप है, उत्सूत्र भाषण है। आपको अकाल मरण मानने से कोई बाधा नहीं आने वाली है, क्या आप मान लोगे तो आपके लिए पता नहीं क्या हो जाएगा। आगम ने लिखा है इसलिए आप मानिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कहता हूं मेरी सारी बातें यहीं छोड़ जाएगी, ना मेरा कोई आग्रह, लेकिन कुंदकुंद महाराज ने जो कहा उस पर विश्वास करके आप मेरी तरफ से विश्वास मत करिए। आप राजवार्तिक उठा करके देख लीजिए, उन्हें राजवार्तिक में लिखा है अकलंक स्वामी ने कि अंतस्य चक्रदस्य ब्रह्मदत्तस्य कृष्णस्य अन्येषां च तादृशानां बाह्य निमित्तवशात् अपवर्तम दर्शनात्, आयु अपवर्त दर्शना, ये वाक्य राजवार्तिक में लिखा गया दूसरे अध्याय में कि अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त का कृष्णादि का बाह्य निमित्त के मिलने से अकाल में मरण होगा, आयु का क्षय होगा, ऐसा राजवार्तिक में लिखा है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैं आज ये कथन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अहिंसाणु व्रत की बात है। यदि हम ये नहीं मानेंगे कि सकाल और अकाल की बात, तो शायद हम अहिंसा व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं। यदि हम ये नहीं मानेंगे कि हम दूसरे को मार सकते हैं, हम दूसरे को बचा सकते हैं, ये विश्वास यदि नहीं होगा तो अहिंसाणु व्रत का पालन नहीं हो सकता है। जो कुंदकुंद महाराज से लेकर के अभी तक की परंपरा में ये पांच व्रत चले आए हैं जिनके पालन करने का उपदेश यहां पर दिया गया है, यदि इसे हम नहीं मानते हैं तो आचार्य कुंदकुंद के ऊपर भी हमें विश्वास नहीं है। ऐसे ही अहिंसा व्रत हमें अपने भावनाओं के साथ इसे पालन करना चाहिए, संकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा का त्याग होना चाहिए और अहिंसाणु व्रत का पालन होना चाहिए। इसी अहिंसाणु व्रत के साथ साथ दूसरा व्रत है सत्यानु व्रत और इसका अतिचार आचार्य समन्तवत महाराज यहां पर दो गाथाओं से इसका स्वरूप कहते हैं। स्थूल मलिकम न वदति न परान बाधयति सत्यमपि विपदे यदंति संता स्थूल मृषावाद वैरमणम परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेख कर्णम च न्यासापहारता च व्यतिक्रमा पंच सत्यस्य। सत्यानुव्रत और सत्यव्रत के अतिचार, उसमें जो गलतियां होती हैं उनको यहां बताया गया। स्थूल अली कम ना बदती, स्थूल झूठ स्वयं ना बोले, ना परान बाद यति, और ऐसा वह बड़ा झूठ दूसरों से भी ना बुलवाए, स्वयं भी इतना बड़ा झूठ स्वयं ना बोले और दूसरों से भी ना। स्थूल का मतलब होता है मोटा मोटा, बड़ा बड़ा, जिस सामने ही दिखाई दे रहा कि ऐसा बोलने से बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, ऐसा झूठ स्वयं ना बोले और दूसरे से भी बोलने के लिए ना कहे, उसके क्या है कहते सत्यानुव्रत होता है। ऐसा झूठ के त्याग करने से उसके सत्य अनुव्रत होता है। और दूसरी बात एक और कहते हैं कि सत्यम अपि विपदे ना बदती ना बाधयति, वो कहते ऐसा सत्य भी ना बोलो कि जिसके बोलने से दूसरे के प्राण चले जाएं, ऐसा सपनी नहीं बोलना चाहेगी और ना दूसरों से बुलवाना चाहेंगे। यदि हम झूठ का तो त्याग करते हैं लेकिन ऐसा सत्य बोल लेते हैं जिससे कि दूसरे के प्राण चले जाएं, तो आपका सत्य भी असत्य ही है, झूठ ही है, पाप ही है। हम झूठ का तो त्याग करें, साथ साथ में ऐसे सत्य का भी हमें त्याग करना चाहेगी जिससे प्राणों का घात होता है। कई उदाहरण आते हैं, किसी ने पूछा एक सत्यवादी से जाकर के, किसी शिकारी ने हाथ में एक चिड़िया लेके गया और पूछा कि बताइए आप तो सत्यवादी हैं, ये चिड़िया मरी है या जिंदा? अब वो क्या विचार करें, आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? आप ये कहे तो देख रहे हो कि जिंदा है।
क्या बोलोगे, जिंदा बोलोगे कि मरी बोलोगे?
तो झूठ नहीं हो जाएगा आपका फिर?
जिंदा चिड़िया को आप मरी कहेंगे तो झूठ नहीं होगा?
कहते हैं नहीं,
ये सत्य है कि जान रहा है कि चिड़िया जिंदा है, वो समझ रहा है कि सत्य यही है कि जिंदा है, लेकिन ये कह दूं कि जिंदा है तो ये अभी दबा देगा। वो कहेगा कि देखो आप कह रहे थे जिंदा ही तो मरी है,
तो मर जाएगी, उसके प्राण चले जाएंगे। तो उसके प्राण को बचाने के लिए ऐसा भी बोल सकते कि तू मरी है, और वो छोड़ के कह देगा देखो वो तो जिंदा है, तुम झूठ बोलते हो, वो झूठ ठीक है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहेंगे।
हम बच सकते हैं, इस तरह के सत्य से भी बचा जा सकता है, झूठ बोल करके बचा जा सकता है। दूसरे के प्राणों की सुरक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात दूसरे में भी है, यदि आप बोलना चाहो तो दोनों में बच सकते हो। एक मुनि महाराज जी तपस्या कर रहे थे और ध्यान में बैठे हुए थे, उसी समय हुआ क्या कि एक गाय दौड़ती दौड़ती निकली, और फिर महाराज जी ने ध्यान गया उनका कि देखा कि वो व्यक्ति तीर कमान लेके चला आ रहा हो, मारने लग रहा है कि शिकारी है। तो उसी समय महाराज जी वहां से उठे और खड़े हो गए। वो शिकारी वहां से निकला तो उसने पूछा कि बाबा जी आपने देखा यहां से गाय निकली क्या? तो महाराज जी बोले कि जब से हम यहां खड़े हैं तब से कोई गाय नहीं निकली। आप क्या कहोगे? महाराज जी ने झूठ बोल दी गए तो देखा है कि अभी निकल गई हो, कह रहा है कि हमने नहीं देखा निकली। उसने पूछा कि महाराज जी आपने देखी गाय निकली यहां से? और महाराज जी समझ रहे कि शिकारी है, तो महाराज जी झूठ भी ना बोले और सत्य भी ना, दोनों से बच जाए तो सही हो जाए वचन। सुबह कह रहे जब से हम यहां खड़े हैं तब से कोई गाय, क्योंकि जब वो निकली तब तो वो बैठे थे, और जब वो उसने पूछा है तब तो दोनों से झूठ भी नहीं बोलना पड़ा, और उस जीव की सुरक्षा भी। ऐसा भी बोला जा सकता है, पाप से ऐसे भी बचा जा सकता है, जो इस प्रकार झूठ से और ऐसे घातक सत्य से बचता है उसके सत्यानुव्रत होता है। ऐसा सत्यानुव्रत हमारे भीतर में आना चाहिए। और दूसरी बात, इस सत्यानुव्रत में कौन कौन सी त्रुटियां हो जाती हैं वो यहां पर बताई गई कि परिवाद अर्थात मिथ्या उपदेश, झूठा उपदेश दे दिया किसी को, अरे इसमें क्या रखा है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बात है, ढोंग है, पाखंड है, उसने छोड़ दिया, आपने मिथ्या उपदेश दे दिया। कोई अच्छे मार्ग पर चल रहा था और आपने उसे गिरा दिया, तो ये क्या है? अतिचार हो गया। वो कहते हैं रहो व्याख्यान, जो रहस्य की चीजें थी जिन्हें प्रकट नहीं करना चाहिए और हमने जान करके प्रकट कर दिया, तो ये रहो व्याख्यान नाम का दूसरा दोष है। इससे हमारा सत्यानुव्रत दूषित होता है, दूषित होता है, मलिन होता है। तो रहो व्याख्यान से भी बचना चाहिए। पैसून्य, पैसून मतलब पैसून का अर्थ तो वैसे चुगली करना होता है, लेकिन इसमें मतलब यह है कि किसी दूसरे के हाथ पैर आंख चेहरा आदि के देख करके उसका अभिप्राय समझ लेना कि ये क्या कहना चाह रहा है, और उस अभिप्राय को प्रकट कर देना कि ये व्यक्ति तो ये कहना चाह रहा था, ऐसा कर रहा था, ये पैसून्य है, पिसुन्नता है, चुगलखोरी जिसे कहते हैं, यहां की वहां, वहां की यहां, ये सब ये दोष है सत्यानुव्रत में, इसमें दोष लगता है। कहते कूट लेख करण, चौथा है कूट, झूठा लेख लिखना, फलाने व्यक्ति ने इतने इतने हजार रुपए लिखे थे और आज तक नहीं दिखे, ये झूठा लेख, या इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को वहां जाकर के मारा था जबकि वो था ही नहीं वहां, और ऐसा लेख लिख दिया, ये क्या है? झूठा लेख है। जिसने जो नहीं किया है वैसा लिख करके प्रदर्शित कर देना, ये झूठा लेख, ये भी एक अतिचार है। न्यासापहारिता, कोई कुछ धरोहर आपके पास में रख गया कोई व्यक्ति की हमारी ये सामग्री रख लेना, लेकिन बाद में वो भूल गया, उसे याद ही नहीं रहा और आपने चर्चा ही नहीं की और उसे बता गए, किसी ने पूछा भी तो हाँ नहीं गया, या मान लो वो आकर के भूल से कम मांगा, उसने रखे तो हजार रुपए थे, उसने कहा कि 500 रख गए, हाँ हाँ 500 ही रख गए थे ले लो, तो 500 तो आपने हजम कर लिए, तो झूठ बोला कि नहीं?
वो भी अतिचार है। इस तरह के हमें इन अतिचारों से भी बचना चाहिए, तभी सत्यानुव्रत का ठीक ठीक पालन हो सकता है, अन्यथा हमारे जीवन में व्रत नहीं आ सकते। ये सत्यानुव्रत भी अहिंसानुव्रत की रक्षा के लिए है, जिससे प्राणी मात्र की जीवों की रक्षा हो, इसके लिए जो सत्यव्रत अंगीकार किया जाता है वही सत्यव्रत सार्थक है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे अहिंसा सत्य आदि व्रत हमारे जीवन में आए, हम सबका कल्याण हो। इसी भावना से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। यदि मेरे द्वारा कुछ ऐसा निकल गया हो तो आप क्षमा करें, और यदि आगम देखना हो किसी को तो मेरे पास आकर के मैं शास्त्र दिखा सकता हूं। भगवान महावीर स्वामी के सिद्ध
क्षेत्र नेवावर में अखिल भारतीय मान संन्यास परिषद के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनसे अवगत कराने के लिए भोपाल संभाग के अध्यक्ष श्री अमरजीत जी अस्पताल को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया यहाँ पर आए। और जो निर्णय परिषद ने लिए हैं भोपाल जैन समाज को अवगत करा।
लगता है आप लोगों की अहिंसा की बात पसंद नहीं आती, इसलिए जल्दी उठ जाते हैं। मजबूरी हो सकती है आपकी के घर जाना हो, लेकिन दो मिनट सुन लेना चाहिए। दस में ज्यादा हो जाएंगे अजमेरा जी, पांच मिनट में कहना अपनी बात।
पांच मिनट में कैसे समय, अगर आप लोग रुकना चाहें तो, और यदि आपको कोई रुचि नहीं है और आचार्य जी के आदेश का भी कोई आदर नहीं है तो आप बड़े शौक से चले जाइए। मुर्दों की समाज में यही जीवन होता है। बंधुओं,